الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة المنافقون کی تفسیر ہم اس کلاس میں آج کل پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے ترجمہ اور خلاصہ تفسیر آیت نمبر 4 تک کر لیا ہے، اور پھر اسی کے تحت پھر معارف و مسائل کے اندر جو شان نزول کا واقعہ لکھا ہوا ہے تو وہ ہم پڑھنا شروع کر چکے تھے پچھلی کلاس میں. تو پیج نمبر 448 مکمل ہو گیا تھا، 449 سے پھر اب آج پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو واقعہ کیا تھا کہ ایک غزوہ تھا بنی المصطلق جس کو کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ لے کر کے مسلمانوں کو لے کر کے اس غزوے کے لیے نکلے تھے. بنی المصطلق کے جو رئیس تھے حارث بن زرار، تو انہوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا مسلمانوں کے خلاف، یا جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں. تو جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کا بڑا نقصان ہوا، کافی لوگوں کے مارے گئے. تو باقی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں نے قید کر لیے. اچھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب جو اگلا ٹائٹل ہے، وطنی یا نسبی قومیت کی بنیاد پر تعاون و تناصر، کفر و جاہلیت کا نعرہ ہے. یہ ہیڈنگ لگائی ہے حضرت نے، اور اس کے تحت لکھتے ہیں کہ مگر اس کے بعد ابھی مسلمانوں کا لشکر اس مرئیسی کے پانی پر جمع تھا. مرئیسی ایک کنویں کا نام تھا جو کہ وہیں پہ موجود تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ مرئیسی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس نام کا ایک کنواں موجود تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی مسلمان وہیں پر موجود تھے کہ ایک ناگوار واقعہ یہ پیش آ گیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں اسی پانی پر باہم جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا یعنی پانی نکالنے میں، یا بھائی پہلے میں نکالوں گا پہلے تم نکالو گے، یا یہ میرا پانی ہے نہیں یہ میرا پانی ہے، اس قسم کا جھگڑا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پانی پر باہم جھگڑا ہو گیا اور نوبت باہم قتل و قتال کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی جھگڑا اتنا بڑا کہ لڑائی جھگڑے پر باقاعدہ فائٹنگ شروع ہو گئی، فزیکل فائٹنگ. مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، یا مہاجرہ ایسے کر کے ابھی میں پکارتے تھے، اور انصاری نے انصار کو پکارا. دونوں کی مدد کے لیے کچھ افراد پہنچ گئے. ٹھیک ہے، انصاری کی مدد کے لیے انصار میں سے کچھ لوگ پہنچ گئے، مہاجرین میں سے کچھ لوگ مہاجر کی مدد کے لیے پہنچ گئے. اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر تشریف لے گا اور سخت ناراضی کے ساتھ فرمایا کہ ما بالو دعو الجاہلیہ، یعنی یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے؟ ما بال کا مطلب ہوتا ہے یہ، یعنی کیا ہوا ہے یہ، کیا معاملہ ہے یہ. دعو الجاہلیہ یعنی جاہلیت کا نعرہ، جاہلیت کی دعوت. صحیح، تو مقصد اس کا یہ تھا کہ اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ ایک بدبو نہیں سوری کہ وطنی اور نسبی قومیت کو بنیاد بنا کر امداد و دفاع کا معاملہ ہونے لگا. اور فرمایا پھر کہ دعوہا، چھوڑ دو اس کو، فإنہا منتنۃ، اس نعرے کو تم چھوڑ دو، یہ ایک بدبودار نعرہ ہے. اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو ظلم سے بچائے، اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے. یہ مشہور حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ جب آپ سے ظلم فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، تو صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ بھئی مظلوم کی مدد تو ہمارے سمجھ میں آتی ہے یا اللہ کے نبی، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ سے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کر کے اس کی مدد کرو، اس لیے کہ اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کو پھر اس کی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. यही उसकी मदद है कि उसको जुल्म से रोको। मुराद ये थी कि हर मामले में ये देखना चाहिए कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। फिर हर मुसलमान का, ख्वाह वो मुहाजिरी हो या अंसारी और किसी कबीला व ख़ानदान का हो, ये फ़र्ज़ हो जाता है कि मजलूम को जुल्म से छुड़ाए और जालिम का हाथ रोके, ख्वाह वो अपना हकीकी भाई और बाप ही क्यों ना हो। ये नस्बी और वतनी कौमियत जाहिली जाहिलाना और बदबूदार नारा है जिससे गंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसके लिए एक और लफ्ज़ जो कुरान ही में इस्तेमाल हुआ है उसको क्या कहते हैं, असबियत। नहनु उस्बा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था कि हम तो एक जत्था हैं, हम तो एक जमात हैं, यानी हम आपस में भाई जो है ना, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। ठीक है, यूसुफ के खिलाफ, यूसुफ से इन सबको हसद था कि इनके जो बाप याकूब अलैहिस्सलाम हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं, ज्यादा उनसे प्यार क्यों करते हैं, हालांकि हम लोग जो है वो एक जत्था है, हम ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा यानी समझदार भी हैं, बड़े भी हैं, ऐसे भी हैं, वैसे भी हैं। ठीक है, तो वो हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते। अब वो इस बात को भूल गए थे कि भाई ये गुनाह का काम करते हैं, तो अगर इनके बाप जो कि अल्लाह के नबी थे और उन सबको पता था कि इनके बाप अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह का नबी जो है वो गुनाह के काम में कैसे किसी को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो असबियत का मारा हो तो वो ये नहीं देखता कि मैं काम गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल ये देखता है कि नहीं, मेरा खानदान अफजल है और बस मेरे खानदान वाले लोग चाहे गुनाह करें चाहे अच्छा करें, मैंने तो उन्हीं को सपोर्ट करना, यही असबियत होती है। ठीक है, और इस असबियत के नतीजे में फिर बहुत ज्यादा खून बहता है और झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, खानदान तबाह होते हैं, जिंदगियां जो है वो तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देख भी चुके हैं बहुत सारे हम पाकिस्तान में, तो इस असबियत के नारे जो है वो बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, तो हमने उसके नतीजे में खून बहता हुआ देखा है और ताशों ताशों उड़ती हुई देखी है मुसलमानों के हाथों, मुसलमानों की असबियत की वजह से। ठीक है, तो ये गंदा और बदबूदार नारा है। अच्छा, तो असबियत का सबको तो समझ में आता है असबियत क्या चीज़ होती है, किसी को कोई सवाल है तो उसके बारे में पूछे जरूर से। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनते ही झगड़ा खत्म हो गया। ठीक है, देखें दिस इज द होल थिंग, ये होता है किसी अमीर का मौजूद होना, किसी लीडर का मौजूद होना। ठीक है, कि जिसके ऊपर ना कौम वालों का इत्तेफाक होना, वो लीडर मौजूद होता है ना तो बड़े से बड़ा झगड़ा शुरू होने के वक्त ही खत्म हो जाता है, बड़ा बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर ना हो, कोई ऐसा अमीर ना हो जिसके ऊपर लोग मुत्तफिक हों, तो फिर किसी की बात नहीं मानी जाती। हम जब छोटे थे तो हमारे शहर कराची के अंदर और हैदराबाद में बहुत ज्यादा लसानी फसादात होते। ठीक है, वो लोग बोले चले जा रहे हैं, मौलाना साहब बोले चले जा रहे हैं और कि भाई असबियत जो है वो गुनाह है, हराम है और गलत बात है, नहीं करना चाहिए, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये है वो है, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती, किसी के कानों में जू नहीं रेंगती, इसलिए कि उलमा को कोई कुछ समझता ही नहीं था। ये तो बोलते रहते हैं, इनकी तो आदत है बोलना, इनको तो हकायक का पता ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं हमारे साथ, ये तो बस बोलते ही रहते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं सुनता था। ठीक है, तो असबियत का झगड़ा जो शुरू हुआ 1980 की दिहाई के अंदर, 1984 में जो शुरू हुआ, तो फिर पता नहीं कितने इंसान जो है वो गए उसके अंदर और खानदान के खानदान तबाह हो गए। ठीक है, तो किसी बड़े को अपने दरमियान पाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए। अगर ये कोई यानी अगर कोई ऐसा नहीं है हमारे दरमियान ना, तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए इस नेमत को, कोई हो जो हमारे दरमियान मसलों को सॉल्व करने वाला हो, जिसको कि फिक्र पड़ी हो, वो हर एक के साथ जो है वो यानी बगैर बगैर किसी बायस के, ठीक है, गैर जानबदाराना तौर पर जो है वो हर एक से जो है मोहब्बत रखता हो, हर एक से इखलास रखता हो, हर एक की खैरख्वाही करने वाला। ठीक है, तो ऐसी शख्सियत का होना जो है ना, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से हमें मांगने की जरूरत है, और अगर है तो हमें फिर इसकी बहुत कदर करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से ना फिर बड़े बड़े फसादात से हम बच जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होना फिर बहुत फसादात होते हैं, बहुत ज्यादा फितना फसाद फैलता है। तो देखिए सहाबा कराम के दरमियान ऐसा हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो सब के नज़दीक काबिले एहतराम थी, तो सुनते ही झगड़ा खत्म हो गया। इस मामले में ज्यादती जहजा मुहाजिर मुहाजिरी की साबित हुई, यानी मुहाजिर थे जिनका नाम जहजा था। इसके बिलमुकाबिल सन्नान बिन वबरा जुहनी अंसारी को जख्म आ गया था, यानी जब लड़ाई हुई थी तो इनको बाकायदा जख्म किया गया था। तो हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला के समझाने से सन्नान बिन वबरा ने अपना हक माफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब जब झगड़ा हो गया और लड़ाई यानी चोट भी आ गई किसी को, तो अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ भी तो करना था कि भाई अब ये बदला नहीं अपना, लेकिन समझाने भी वाले मौजूद थे, ठीक है, उन्हीं की कौम में से लोगों ने इनको समझाया और इन्होंने अपना हक माफ कर दिया, और झगड़ने वाले जालिम और मजलूम फिर भाई भाई बन गए, ठीक है। असबियत और लिसानियत में क्या फर्क है? लिसानियत असबियत की एक किस्म है, ठीक है ना। असबियत का मतलब होता है गुरोह बंदी, ठीक है, असबा, असबा कहते हैं गुरोह को, उसबा बल्कि उसबा कहते हैं गुरोह को, ठीक है। तो अब ये गुरोह बंदी किसी भी बुनियाद पर हो सकती है, ठीक है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर गुरोह बंदी किस बुनियाद पर थी बताएं जरा, किस बुनियाद पर वो गुरोह बंदी थी? वहां पे कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी भाइयों की जुबान अलग थी, कोई एक ही जुबान बोलते थे सारे के सारे, तो किस बुनियाद पर वहां पे गुरोबंदी हुई थी? प्लीज एनेबल अदर चैट विंडो ऑल्सो, प्राइवेट चैट विंडो उनका 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 मतलब है शायद नहीं, ये बोगोज नफरत की बुनियाद पर नहीं, मतलब खुद पसंदी की नहीं, मतलब मैं वजह नहीं बता नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे जुबान, जुबान एक रीजन बनता है लोगों के ग्रुप बनाने का कि भाई ये मेरी जुबान बोलने वाले लोग, ठीक है, तो वहां पर क्या रीजन बना था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक ग्रुप बनाया था? हाँ, माँ की बुनियाद पर, इन सब की माँ एक थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ अलग थी, तो माँ की बुनियाद पर ग्रुप बंदी हो गई, हालांकि एक ही बाप की औलाद, राइट। तो ग्रुप बंदी तो माँ की बुनियाद पर भी हो सकती है कि भाई उसकी माँ अलग है, हमारी माँ अलग है, राइट। उसी तरीके से ग्रोह बंदी जो है वो जुबान की बुनियाद पर भी हो सकती है, ग्रोह बंदी जो है वो यानी इलाके की बुनियाद पर हो सकती है, हालांकि सबकी जुबान एक है, ठीक है, सभी उर्दू बोलते हैं, लेकिन जो है वो लखनऊ वाले जो है वो अपना एक अलग ग्रोह बना ले, और देहली वाले अपना तो अलग ग्रोह बना ले, है ना, ये लखनवी है ये देहलवी है, तो अब ग्रोह बंदी हो गई, हालांकि दोनों उर्दू बोलते हैं, राइट। तो ग्रोह बंदी के लिए ना शैतान को यानी कोई भी बहाना इस्तेमाल कर सकता है शैतान, तो वो जुहाद ज्यादा थी ये तो बहाना बना ना, लेकिन जिस बुनियाद पर उन्होंने पार्टीशनिंग करी, पार्टीशनिंग की बुनियाद क्या थी? माँ, ठीक है। अच्छा, तो हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु के समझाने से अच्छा ये हो गया। मुनाफिकीन की एक जमात जो माल गनीमत की तमाम के साथ लगी हुई थी, उनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, जो दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से दुश्मनी रखता था मगर दुनियावी फवाइद की खातिर अपने आप को मुसलमान कहता था। यानी ये जो मुनाफिक था ये मदीना मुनव्वरा का रहने वाला था, ठीक है ना, ये यानी ये वो यहूद कबाइल में से नहीं था, ठीक है, बल्कि अरब था, मदीना मुनव्वरा का यानी खजरज कबीले का, जैसे दो दो सबसे मेन कबीले होते थे ना मदीना मुनव्वरा के अंदर, औस और खजरज, तो इसका ताल्लुक जो है वो खजरज कबीले से था और ये उनके असातजा में से था। ये प्राइवेट चैटिंग का मैंने वैसे उनको कहा था कि उसको एनेबल ना करें, उसकी रीजन ये थी कि एक्चुअली इस क्लास के लिए नहीं नहीं था वो, बच्चों की क्लास के लिए था। मैं कहने वाला था आपको लेकिन मेरे जहन से निकल गया कि इस क्लास में अगर आप एनेबल कर सकते हैं इसको, तो वो ये था कि बस वो जो है ना बच्चों की क्लास में कहीं बच्चे आपस में चैटिंग ना शुरू कर दें, तो आपके लिए ये है कि टीचर से भी आप प्राइवेट चैट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो डिसेबल हो गए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कुछ ऐसे सवाल करना चाहते हैं जो कि जिसके ऊपर या तो उनको डांट पड़ने वाली होती है, उनको पता होता है डांट पड़ने वाली है, तो मैंने उनको कहा वो भी है कि हाँ भी ऐसे सवाल प्राइवेट विंडो में कर दिया ताकि किसी को पता ना लगे कि आपको डांटा जा रहा है, या दूसरा भी ऐसा कोई और भी प्राइवेसी का रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्लास में अगर अनेबल कर दें, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं जूम के अंदर के जी प्राइवेट चैट यूज करके ना लोगों ने फिर यानी वायरसेस और उसकी चीजों को कभी शुरू कर दिया मामला। तो एनीवे ये एक एहतियाती तदबीर थी बेसिकली। तो मुनाफिकीन की एक जमात जो माल गनीमत के तमाम इंसानों के साथ लगी हुई थी उसका सरदार ये था। इसको जब मुहाजरीन और अंसार के बाहम तसादम की खबर मिली तो उसने मुसलमानों में तफरका डालने का मौका गनीमत पाया और अपनी मजलिस में जिसमें मुनाफिकीन जमा थे और मोमिनीन में से सिर्फ जैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, उसने अंसार को मुहाजरीन के खिलाफ भड़काया और कहने लगा कि तुमने उनको अपने वतन में बुलाकर अपने सरों पर मुसल्लत किया है, जज़ाकअल्लाह, अपने अम्वाल जायदाद उनको तकसीम करके दे दिए, यानी वो जो मवाखात आपसे कायम फरमाई थी उसके अंदर जो अंसार थे उन्होंने अपने जायदादें वगैरह मुहाजिरीन को दे दी थी। हम पीछे पढ़ चुके हैं सूरह कौन सी थी, सूरह मुंतहिना के अंदर या सूरह जुमा से पहले जो वहाँ पे हमने पढ़ा था ईसार के जो वाक़ात पढ़े थे सूरह सफ में। तो तुमने जो है वो खुद ही उनको अपने सरों पर मुसल्लत कर लिया है, अपने अम्वाल और जायदाद उनको तकसीम करके दे दिए हैं, ये तुम्हारी रोटियों पर पले हुए हैं। यानी कैसे ना शैतान जो होते हैं चाहे इंसानों में हो या जिन्नों में हो किस तरीके से उभारते हैं इंसान के जज्बात को, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे ऐसे तुम्हारे टुकड़ों हमारे यहाँ क्या कहा जाता है तुम्हारे टुकड़ों पर पले हुए हैं ये लोग, ठीक है, अब तुम्हारी मुकाबले पर आ गए ये लोग, तुमसे बड़े हो गए ये लोग, अगर तुमने अब भी अपने अंजाम को ना समझा तो आगे ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे, ठीक है। बिल्कुल वही जो हमारे मुल्क के अंदर भी इसी किस्म के बातें कह कह करके ना फिर वो जो जो उस किस्म के लोग होते हैं उनको उभार दिया कि हाँ ये तुम्हारे हुकूक हुकूक की जंग लड़ो, हक परस्त बन जाओ और ये करो, राइट, मार दो सबको उठा करके, बिल्कुल यही अब्दुल्ला बिन उबई के अल्फाज 20वीं सदी के अंदर भी वैसे ही एप्लीकेबल थे जैसे कि उस जमाने में एप्लीकेबल थे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि आइंदा माल से इनकी मदद ना करो तो खुद ही इधर उधर भाग जाएंगे, और अब तुम्हें चाहिए कि जब मदीना पहुंच जाओ तो तुम में से जो इज्जत वाला है वो जलील को निकाल बाहर करे। तो इसकी मुराद इज्जत वाले से खुद अपनी जमात और अंसार थे और जलील से मुराद माज अल्लाह अल्लाह की पना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजरीन सहाबा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसका ये कलाम सुना तो फौरन बोले कि वल्लाही तू ही जलील ख्वार और मबगूज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से दी हुई इज्जत और मुसलमानों की दिली मोहब्बत से कामयाब, ठीक है, ये पक्के ईमान वाले थे। तो ही जस्ट हैपन टू बी देयर इन दिस मजलिस, ठीक है, बाकी सारे के सारे मुनाफिकीन थे, ये एक ईमान वाले थे तो वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने इस तरीके से फौरन जवाब दिया इसको। अब्दुल्ला बिन उबई चूंकि अपने निफाक पर पर्दा डालना चाहता था इसीलिए उसने साफ अल्फाज नहीं बोले थे, है ना, घुमा फिरा करके उसने बात करी थी जो इज्जत वाले हैं ना वो जिल्लत वालों को बाहर निकाल देंगे। तो इस वजह से ना उस वक्त ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह के इजहार गज़ब से उसको होश आया कि मेरा कुफर तो जाहिर हो जाएगा, तो हजरत ज़ैद से उजर किया कि मैंने तो ये बात हंसी में कह दी थी, मेरा मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ करना नहीं था, ठीक है, यानी पर्दा डालने की कोशिश करी हुई कस्में खा खा करके जो पर्दा डालते थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु इस मजलिस से उठकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इब्न उबई का ये सारा वाकया सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह खबर बहुत शाक हुई, चेहरा मुबारक पर तग़य्युर के आसार नजर आने लगे, ठीक है, क्योंकि दिल के ऊपर जब असर होता है ना किसी बात का, गम का असर होता है तो चेहरे चेहरा जो है वो इसको यानी उसकी अक्कासी करता है, दिल के अंदर जब खुशी हो तो चेहरे के ऊपर खुशी के आसार नजर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ये जो है ना ये एक सच्चे और खरे इंसान की निशानी होती है कि उसके दिल पर जो गुजर रही होती है ना वो उसके चेहरे पर नजर आती है, ये खरे होने की निशानी है, ठीक है। लेकिन जो मुनाफिक होता है ना उसमें यही बात होती है कि उसके दिल पे जो भी हो ना वो चेहरे पर नहीं दिखाता। सारे इसको याद है कि अमेरिका में जब रहते थे तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत वज़ा कता के साथ ही रहते थे, दाढ़ी वाड़ी के बाद यानी जुब्बा वगैरह के साथ ही। तो एक दफ़ा यानी एक एक बिल्डिंग में जाकर के अपार्टमेंट ले लिया था जहाँ पर तकरीबन सारे जो है ना वो गोरे बूढ़े गोरे होते थे, बूढ़े गोरे राइट। तो अब वहां बूढ़ा गोरा जा रहा है या कोई गोरी औरत जा रही है, तो बहुत ही ना यानी अच्छे तरीके से मिलते थे, ठीक है, यानी हाय हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज द वेदर राइट, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, ठीक है। तो मैं भी अच्छे उनको ऐसे ही जवाब दे देता, मुझे क्या भी परवाह के भाई क्या क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो फिर कुछ अर्से के बाद ना वहां से मूव होने का फैसला किया, क्योंकि जाना था वो दूसरे अपार्टमेंट मूव होना था। तो ना ऐसे ही एक मेरे फ्लोर के ऊपर एक गोरा मर्द रहता था बूढ़ा, और दूसरी एक गोरी औरत रहती थी, वो भी बूढ़ी राइट। तो एक दफा ना वो मर्द आके मुझे कहने लगा कि अच्छा तुम जा रहे हो यहाँ से, तो बहुत अच्छा फैसला किया कि तुम जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बारे में ना ये सारे लोग बैठ करके नीचे क्या बातें करते, ठीक है, क्योंकि उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ना एक कॉमन रूम टाइप का, तो वहां पर ये सारे बूढ़े जो है ना वो इकट्ठा हुआ करते थे और फिर आपस में बातें बातें क्या करते थे, जाहिर है फिर वो लोगों के बारे में बातें होती होंगी। तो वो कहता है कि तुम्हारे बारे में ये क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, अच्छा है कि तुम अपने जैसे लोगों के दरमियान जाकर के रहो, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा था एक देसी इलाके के अंदर, वो हो रहा था। इसी तरीके की बात जो है वो उस गोरी औरत ने भी मुझे बताई, वो पता नहीं उनको क्या रहमदिली उनके जहन में आ गई, उस दिन में आ गई। तो मुझे फिर ना उस इन बातों से और भी कंफर्म हो गया एक बात, जो कि पहले से अंदाजा था इस बात का कि ये जो गोरे होते हैं ना, ठीक है, अब ये इसका मतलब नहीं है कि सारे ऐसे ही होते हैं, जाहिर एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, इनके यहाँ जो है ना ये स्कूलिंग के जमाने में, ठीक है, यानी जब ये स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो वहां पर इनको बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, ठीक है, कि आपने कैसे जो है ना वो हर एक से अच्छे से मिलना है, ठीक है ना, इट डज नॉट मैटर कि आपके दिल में क्या गुजर रही है, आपने हर बंदे से अच्छे से मिलना है, बहुत अच्छे से बात करनी है, ठीक है। तो अब ये जो है ना वो बहुत कम इनमें से आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मुंह पर आपको बुरा भला, ठीक है ना, तकरीबन सारे जो है मुंह पे बहुत अच्छा अच्छे अच्छे से रहते हैं, लेकिन इसके बरक्स उसी मुल्क में रहने वाले, इन्हीं के साथ रहने वाले, आप देखें काले काले जो अमेरिकन होते हैं ना, अफ्रीकन अमेरिकन जिनको कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनमें से अक्सर जो है ना जो कि बिल्कुल अलग थलग उनके स्कूल होते हैं, कालों के स्कूल कहलाते हैं वो राइट। जो गरीब गुरबा वाली जो नेबरहुड होती है ना, वहां पे जो स्कूल होते हैं, काले तकरीबन सारे गरीब ही होते हैं, तो वो उन स्कूलों में जाते हैं, वहां पर इस किस्म की ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, क्योंकि वहां पर तो यानी जान के लाले पड़े हुए होते हैं, कौन किसको मार दे, जान से मार दे किसी को, ठीक है, इस किस्म के तो वो स्कूल होते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो काले जो है ना वो अगर आप पे गर्म है ना, तो वो आपको मुंह पे आकर के बोलेंगे, ठीक है ना, और बुरा भला कहेंगे, जो भी कहेंगे ना, वो मुंह पे उनके नजर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन गोरों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये यानी अब आप उसको पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें, लेकिन कम से कम इतना तो है ना, वो जो काले होते हैं वो कम से कम खड़े तो होते हैं ना, पता लग जाता है कि भाई वो, जाहिर उस जमाने में वो 11वीं शरीफ का वाकया भी हुआ था 2001 के अंदर जो, ठीक है, तो उसके बाद तो फिर मुसलमानों के लिए तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था कुछ अर्से के लिए। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस फिर हमें होते रहते थे। तो बहरहाल तो नबी अलैहि सलाम से ज्यादा खरा तो कोई हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो आप के कल मुबारक के ऊपर जो भी कैफियत आती थी ना, तो वो फौरन चेहरे के ऊपर जाहिर होती थी, जब गुस्सा आता था तो गुस्सा भी फौरन चेहरे के ऊपर जाहिर होता था, ठीक है, रगें तन जाती थी, चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था, ठीक है, ये गुस्सा फौरन चेहरे पे नमूदार होता था। और इसी तरीके से यहाँ पर जब दिल के ऊपर एक ये गुस्से वाली कैफियत नहीं थी, लेकिन दिल पर ये बहुत शार्प गुजरी है, यानी जिसको कहते हैं ना दिल दुखना, ठीक है, तो अब इसके असरात फौरन चेहरे के ऊपर नमूदार हुए, तगैयुर यानी चेहरा बदल गया, तगैयुर का मतलब होता है चेंज हो जाना। तो जैद बिन अरकम तो कम कम उम्र सहाबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि लड़के तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, जैद बिन अरकम ने कसम खाकर कहा कि नहीं, मैंने अपने कानों से उसके ये कलमात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हें कुछ शुबा तो नहीं हो गया, जैद बिन अरकम ने फिर वही जवाब दिया, और फिर इब्ने उबई की ये बात मुसलमानों के पूरे लश्कर में फैल गई, या तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ और भी सहाबी बैठे हुए डेफिनेटली एक्चुअली बैठे हुए थे, तो जब दूसरों ने भी ये बात सुनी ना, तो चूंकि आपसे सलाम ने कोई हुक्म तो नहीं दिया था कि किसी को मत बताना, तो इस वजह से जाहिर है फिर लोगों ने आपस में शेयर करना शुरू कर दिया और पूरे लश्कर के अंदर ये बात फैल गई, और इतनी फैली कि आपस में इस बात के सिवा कोई बात नहीं रही, ठीक है, चहमगोइयां होना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो बातचीत जो है वो शुरू हो गई आपस में। इधर हजरात अंसार सब जैद बिन अरकम को मलामत करने लगे कि तुमने कौम के सरदार पर तोहमत लगाई है। भाई सरदार की एक एक वैल्यू होती है, एक पोजिशन होती है, तो किसी को पता तो नहीं था, मेजोरिटी लोगों को तो नहीं पता था कि जी ये तो मुनाफिक है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम हर एक को बताते के थोड़ी फिरते थे, चंद करीबी लोगों को पता होता था कि भाई ये कौन है। तो लोग तो फिर समझने लगे कि ये तो कौम का सरदार है, मुसलमान है, नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी है, तो ये जैद बिन अरकम को क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है ऐसी तोहमत लगा दी। और कतअ रहमी की, जैद यानी तुमने कौम के सरदार पर तोहमत लगाई और कतअ रहमी करी है, यानी ये तुम्हारी कौम का सरदार है, गोया कि तुमने ना अपने कौम के बंदे के साथ जो है वो अपने ताल्लुक को खराब कर लिया है, जिसको कतअ रहमी कह, ठीक है। क्योंकि कबीला की बुनियाद पर वहां पे होती थी ना, तो कबीला जो था वो तो बेसिकली एक असल उसकी क्या थी, एक ही बाप और एक ही माँ की औलादे, वही आगे चल करके जो है वो कबीले की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। तो कबीले के तमाम अफराद जो है ना, फिर उनका आपस में सिला रहमी का रिश्ता होता था, ठीक है, यानी बाकायदा रिश्तेदारियां होती थी इनके आपस में। तो इस वजह से जैद बिन अरकम को उन्होंने कहा, दीगर अंसार ने, कि तुमने कतअ रहमी करी। ये लोग जो थे ना, स्पेशली मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग और इवन मदीना मुनव्वरा के भी रहने वाले लोग, ठीक है, ये लोग जो हैं ये बाकायदा प्राइड लिया करते थे इस बात पर, फख्र किया करते थे इस बात पर कि हम तो सिला रहमी करने वाले लोग, ठीक है, हम तो रहम के रिश्ते रिश्तेदारियों के साथ जो है ना वो मेल जोल इख्तियार करते हैं, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ये ना अपनी बहुत, यानी ये एक क्वालिटी इन लोगों के अंदर थी, ठीक है, तो इसके ऊपर ये बाकायदा फख्र भी किया करते थे, ठीक है। हत्ता के यहूदियों का एक सरदार था काब बिन अशरफ, बहुत बड़ा दुश्मन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, बहुत बड़ा दुश्मन था। तो ये मदीना यानी ये मक्का मुकरमा गया था गज़वाए उहद के बाद, और वहां पर जाके ना इसने बाकायदा प्लॉटिंग करी थी मुसलमानों के खिलाफ कुफारे मक्का के साथ मिलकर के। तो कुफारे मक्का ने उससे पूछा था उस वक्त कि भाई हम तो जाहिल लोग हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, तुम तो अहले किताब हो, तुम तो यानी दीन वाले लोग हो ना, तो तुम हमें ये बताओ कि हमारा दीन ज्यादा बेहतर है या तुम्हारा दीन ज्यादा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उस पर काब बिन अशरफ ने मक्का मुकरमा के मुशरिकीन से सवाल किया था कि तुम्हारा दीन है क्या, क्या है तुम्हारा दीन। तो उसके ऊपर जो उन लोगों ने जवाब दिया था ना, बहुत यानी बहुत ही जबरदस्त जवाब था। तो उन्होंने इस किस्म का जवाब दिया था कि हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, राइट। हमारा दीन क्या है कि हम जो है ना वो ऊंटों का दूध पिलाते हैं जो हज पे आने वाले लोग होते हैं उनको, हम मेहमान नवाजी करते हैं, ठीक है, हम काबतुल्ला की सफाई करते हैं, हम काबतुल्ला की खिदमत करते हैं, ठीक है, और हम जो है वो सिला रहमी करते हैं। ये उन्होंने अपने दीन को डिस्क्राइब किया मक्का मुकरमा के मुशरिकीन, जिसको आज के दौर में क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का का जो दीन था ना, जिसके ऊपर वो बहुत फखर किया करते थे, वो दीन भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला दीन था, सही है। लेकिन दीन इस्लाम कौन सा वाला दीन है भाई, दीन इस्लाम के बारे में अगर कोई फर्स्ट वर्स की बात करें तो दीन इस्लाम को कैसे डिफाइन करेंगे, ये कौन सा वाला दीन है फिर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला दीन है, और अगर नहीं है तो फिर कौन सा वाला दीन है। जी दीन इस्लाम कौन सा वाला दीन है, कुफारे मक्का का जो जो दीन था वो था ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जी अल्लाह और रसूल फर्स्ट, ठीक है ना, ये है दीन इस्लाम, ठीक है, एंड ह्यूमैनिटी कम्स आफ्टर इट, ठीक है। ये नहीं कि इसमें ह्यूमैनिटी है नहीं, ये बिल्कुल ही नाउज बिल्ला जो है वो कोई जुल्म ज्यादती वाला दीन है और अल्लाह रसूल बस, नहीं, अल्लाह और रसूल फर्स्ट, ह्यूमैनिटी नेक्स्ट, ठीक है, ये है दीन, दीन इस्लाम। तो आज अगर कोई इसको उल्टा करे और कहे कि नहीं मैं ज्यादा बड़ा मुसलमान हूँ, मैं ज्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, ठीक है, अल्लाह के बारे में अकीदा जो है वो तौहीद का ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, तो फिर तो वो कुफारे मक्का के सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो थे कतअ रहमी को बहुत बुरा समझते थे, तो बाकायदा जैद बिन अरकम को जो है वो उसके ऊपर मलामत की गई कि तुमने कतअ रहमी करी। जैद बिन अरकम ने फरमाया कि खुदा ताला की कसम पूरे कबीले खजरज में मुझे इब्ने उबई से ज्यादा कोई महबूब नहीं, यानी इस वाकये से पहले कोई ज्यादा महबूब नहीं था, मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था, मगर जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये कलिमात कहे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, और अगर मेरा बाप भी ऐसी बात कहता तो मैं उसको भी जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का जो दीन था ना ये अल्लाह और उसके रसूल फर्स्ट वाला दीन है, ठीक है, तो अपना बाप भी अगर कहता तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उस मुनाफिक की गर्दन मार दूं, यानी उसको कत्ल कर दूं। और बाज़ रिवायात में है कि फारूक आज़म उन्होंने ये अर्ज किया कि आप अब्बाद बिन बशर को हुक्म दे दीजिए कि उसका सर कलम करके आपके सामने पेश करें, क्योंकि ये उन्हीं के ये यानी अब्दुल्ला बिन उबई के ही कौम में से होंगे, ठीक है, तो वो कत्ल करेंगे तो फिर यानी कोई वो कौमियत वाला झगड़ा कहीं खड़ा ना हो जाए, तो इस वजह से अब्बाद बिन बशर को हुक्म दे के वो उसको कत्ल करके इसका सर आपके सामने पेश कर दें। बहरहाल जो भी फरमाया उन्होंने, लेकिन बात यही थी कि बस उसको जिंदा ना छोड़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा कि लोगों में ये शोहरत दी जाएगी कि मैं अपने असहाब को कत्ल कर देता हूँ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न उबई के कत्ल से रोक दिया, क्योंकि जो जनरल पब्लिक थी, ठीक है, उनको तो ये सारी तफसीलात नहीं पता थी ना, अब उस जमाने में व्हाट्सएप ग्रुप्स तो होते नहीं थे, ठीक है, कि भाई वो उसके ऊपर फौरन से एक व्हाट्सएप मैसेज लिखा और जो है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है, इस किस्म की कोई यानी ऐसी टेक्निक्स वगैरह होती नहीं थी, और यानी बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट की कोई ऐसी सूरत नहीं बन रही थी, क्योंकि सिर्फ एक ही गवाही आई थी हजरत जैद बिन अरकम की, और उसके अलावा कोई ऐसी बहुत ही ज्यादा ठोस किस्म की कोई बात नहीं थी। तो अब इसकी बुनियाद के ऊपर अगर नबी सल्लल्लाहु उसके कदर का फैसला फरमा देते हैं ना, तो अगरचे कि नबी सल्लल्लाहु को तो शक नहीं था इस बात के ऊपर, ठीक है, आप को तो शायद पहले से ही पता होगा इस बात का कि ये मुनाफिक है, ठीक है, और करीबी साहबा को भी पता था, लेकिन ये बात जो है वो अवाम उन्नास को नहीं पता थी, इस वजह से आप ने इसको कहते हैं सियासत, ठीक है ना, ये सियासी फैसला था, यानी इसका मतलब होता है कि कोई बजाहिर बहुत सही काम नजर आता हो कि भाई इसने जो है वो इतनी बुरी बात कही अल्लाह के रसूल के बारे में, इसको तो जिंदा रहने का हक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इंतजामी उमूर हैं उन इंतजामी उमूर में इस बजाहिर सही फैसले से एक फसाद फैलने का खदशा है, ठीक है, तो इस वजह से इस फैसले को जो है वो अभी नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हम पिछली क्लासों में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, जो लोग मौजूद थे इंशाल्लाह उनको याद होगा, और जो लोग नहीं थे उनको चाहिए कि पिछली सूरतों की रिकॉर्डिंग सुना करें, ठीक है, तो ये सियासत का फैसला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इस वजह से कत्ल से रोक दिया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कलाम की खबर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के बेटे को पहुंची, उसका नाम भी अब्दुल्ला था और ये पक्के मुसलमान थे, ये फौरन आज वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर आपका इरादा मेरे बाप को उनकी इस गुफ्तगू के नतीजे में कत्ल करने का है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपने बाप का सर काट कर आपकी खिदमत में इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें पेश करूँ, और अर्ज किया कि पूरा कबीला खजरज इसका गवाह है कि उनमें कोई भी मुझसे ज्यादा अपने वालिदैन की खिदमत व अताअत करने वाला नहीं, ठीक है, यानी ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही अपने बाप से जो है नफरत करता हूँ, मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता या उसकी जो है मीरास का मैं पहले ही इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा बाप मरे तो मुझे उसकी विरासत मिले तो चलो एक अच्छा बहाना मिल गया मैं जाकर उसको मार के आ जाता हूँ, नहीं, बल्कि साथ साथ ये भी दलील दी कि मैं मशहूर हूँ कि सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा यानी जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से कह रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है, बाप से मुझे कोई बोझ नहीं है, ठीक है, तो कहने लगे कि मगर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी कोई चीज में बर्दाश्त नहीं हो सकती, और साथ साथ ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात फरमाई एक और भी कि मुझे खतरा है कि अगर आपने किसी और को मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दिया और उसने कत्ल कर दिया तो ऐसा ना हो کہ جب میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں تو مجھ پر غیرت نسبی غالب آ جائے. ٹھیک ہے, یعنی وہی عصبیت غالب آ جائے, غیرت نسبی یعنی اپنی نسب کی, اپنی خاندان کی غیرت میرے اوپر غالب آ جائے اور میں اسے قتل کر جاؤں. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے پہلے بھی کلاس, آپ کی کلاس میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ایک بات انسان کو ذہنی طور پر پتہ ہوتی ہے کہ معاملہ ایسے ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں نا, وہ اتنی زیادہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں کہ اس کی عقل کو معاف کر دیتی, ٹھیک ہے, اپنی عقل کو, یعنی اس کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں. تو یہ ایک 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 ریئل فیکٹ ہے کہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے کہ منافقین کا معاملہ تھا کہ ان کو پتہ تھا, جیسے یہودیوں کا خصوصا, کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کا جو حسد تھا اور ان کا تکبر تھا, یہ ان کی عقل کے اوپر غالب آ جاتا تھا اور یہ ایمان نہیں لے کر گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ پھر ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں. دوسری بات, جیسے کہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, کہ آئی ول ہینڈل اٹ, آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ, کہ جب میں اپنے باپ کو چلتا پھرتا دیکھوں گا تو میرا ایمان تو اتنا مضبوط ہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, میں آرام سے اس بات کو یعنی اگنور کر دوں گا کہ ہاں بھی میرا باپ تو کافر تھا, آخر کو اس نے نبی علیہ السلام کی شادی میں ایسی گستاخی کری تھی, تو اس بندے نے اگر میرے باپ کو قتل کیا ہے تو یعنی دس از ہاؤ اٹ واز سپوز ٹو بی. ٹھیک ہے, نہیں, اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے اس وقت شیطان میرے اوپر غالب آ جائے, ہو سکتا ہے میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جائیں اور میں غلط کام کر بیٹھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ ایک دوسرے بہت ہی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہمارا دین سیلف کانفیڈنس کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت ہی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے, لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لے لیا ہے. اپنے آپ پر بھروسہ, بلیو ان یور سیلف, وہی تو کافروں والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ہم جو ہے نا وہ فخر کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں, اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ ان یور سیلف, یو ہیو ٹو ہیو کانفیڈینس ان یور سیلف. یہ بیسیکلی ہم صرف امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کافروں سے, ان الفاظ کو امپورٹ کر کے نا ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں طوطے کی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے, ہم اپنے یعنی اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے, بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام کو بھروسہ نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام تو ایسے ایسے ان کے واقعات ہیں کہ ہم تو سن کر کے ہی جو ہے نا وہ یعنی ہمارے کراچی میں کہتے تھے دماغ بھن سے اڑ گئے, ہمارا دماغ ہی بھن سے اڑ گیا اگر ان کے واقعات جو ہے وہ یعنی اس کانٹیکسٹ کے واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں. تو بہرحال تو یہ نا اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا کرتے تھے, تو ان کو ہمیشہ خوف لگا ہوتا تھا کہ شیطان جو ہے نا مجھ سے غلط کام کروا بیٹھے گا اور میں اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر بیٹھوں گا اور یہ پھر میرے لیے عذاب کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے, میں اس کا قتل کر بیٹھوں گا جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میرا ارادہ اس کے قتل کا ہے, نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, بات کلیئر کر دی کہ نہیں ایسی کوئی بات, ابھی ایسی نوبت ہی کوئی نہیں آئی ہے, تو ضرورت نہیں ہے اس طرح سے. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرما دیا اور خود ناقہ یعنی خود اپنی ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو جس کا نام قصوہ تھا, اس پر سوار ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شروع کرنے کا جو وقت تھا وہ یعنی عمومی طور پر نا کیا تھا, رات کا وقت ہے, جبکہ یعنی گرمی کے موسم میں جو ہے رات کے وقت, کیونکہ ریگستان کے اندر کم گرمی ہوتی ہے یا بلکہ ٹھنڈک ہی ہو جاتی ہے, تو اس طرح سے پھر یعنی خاص ٹائم ہوتے تھے سفر کرنے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان فرما دیا اور اپنی اونٹنی میں سوار ہو گئے. جب عام حضرات صحابہ روانہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور دریافت کیا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ یعنی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے تو ان سے بھی جو ہے نا ان کا موقف بھی پوچھ لینا. ٹھیک ہے, ہمارے مشائخ کے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور तुम्हें ये कहे कि फलाने शख्स ने उसकी एक आंख फोड़ दी है, ठीक है ना, यानी इतना जोर से उसको मारा है कि उसकी आंख यानी फोड़ दी है, यानी बिल्कुल ही गायब हो गई है, और तुम देख भी रहे हो कि हाँ वाकई उसकी एक आंख जो है वो गायब हुई भी है, ठीक है, तो फिर भी तुम उस वक्त तक फैसला ना कर लेना, उस वक्त तक फैसला ना करना जब तक दूसरे बंदे को भी बुला के ना देखो, हो सकता है इसने उसकी दोनों आंखें फोड़ी, है ना, क्योंकि वन साइड ऑफ द स्टोरी, उसकी बुनियाद पर आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा अपना मौकफ जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पेश करने की कोशिश करता है, और ऐसा लगता है कि हाँ यही सच्चा है और बाकी सारे के सारे झूठे हैं, यही मजलूम है बाकी सारे के सारे जालिम है, ठीक है, इस वजह से अल्लाह ताला जिनको भी यानी डिसीजन मेकिंग पोजिशन के ऊपर फाइज करता है, काजी बनाता है या शेख बनाता है, ठीक है, जिन्होंने के लोगों के दरमियान जो है वो मामलात को तय करना होता है, तो उनको बहुत ज्यादा तहम्मुल के साथ काम लेना होता है और इमीडिएटली ना जंपिंग टू द कंक्लूजन नहीं करना होता है, ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुलवाया और इससे दरियाफ्त किया कि क्या तुमने ऐसा कहा है, तो ये कसम खा गया कि मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा है, ये लड़का ज़ैद बिन अरकम झूठा है, ठीक है, ये बुला करके पूछना, अब जाहिर है कि बंदा जो है ना वो तो अपने आप को डिफेंड करेगा, खुद का बंदा जो होता है वो अपने आप को डिफेंड ही करेगा, कसम खा जाएगा, झूठ बोलेगा, लेकिन जो साहिबे बसीरत होते, ठीक है ना, तो उन लोगों को जो है ना वो चेहरे पढ़ना भी आता है, चेहरे पढ़ना, नबी अलैहिस्सलाम को तो खैर अल्लाह ताला दिनों के अहवाल भी बता दिया करते थे, ठीक है, तो बंदे को बुलाया तो उसके दिल का हाल जो है वो उसको कहते हैं कशफुल कुलूब, ठीक है, कुलूब के क्या अहवाल चल रहे हैं, कहते हैं ना लाई डिटेक्टर, आजकल इन्होंने लाई डिटेक्टर बना लिए हैं, इंसान ने अपने साइंसी तरक्की में लाई डिटेक्टर, कि जब बंदे से सवाल किया जाता है ना तो वो एक किस्म का एक वो लगा देते हैं कि वो जो आपके सारे के सारे वो वाइटल साइंस को पिक करते रहता है, तो अगर बंदा झूठ बोलेगा ना तो ऑटोमेटिकली उसके जो बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से शूट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक एंक्शियसनेस होती है उसके अंदर, ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है, ये सच नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, और जो सच बोल रहा होता है तो सच बोलने पर तो वैसे ही इत्मीनान होता है, तो उसके कोई ऐसे हॉर्मोन वगैरह किक नहीं करते होंगे, तो पता लग जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, तो ये लाई डिटेक्टर, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह ताला उनको कशफुल कुलूब अता फरमा देते हैं, तो वो दिनों के अहवाल पता लग जाता है, हमेशा नहीं होता, जब चाहते हैं अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, ठीक है, तो एक तो होता है कल्ब का हाल जो है पता हो जाना, एक ये भी होता है कि अगर कल्ब का हाल आपको नहीं भी पता चल रहा है ना, यानी आपको जो है वो कशफुल, लेकिन फिर भी अगर आप अकलमंद हैं तो चेहरे के हवाल से ही पता लग जाता है कि बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वो आंखें साथ नहीं देख देती, इधर उधर देखना शुरू हो जाता है, या जुबान साथ नहीं दे रही होती, या जो है वो ऐसी बातें कर रहा होता है नॉन कोहेरेंट किस्म की, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, ठीक है, तो अगरचे कि वो झूठ ही बोल रहा है लेकिन बंदे को पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसी वजह से ना ये जो स्टेटमेंट लेनी होती है, इस स्टेटमेंट लेने की वैल्यू होती है, अब ये नहीं कह सकते कि भाई इसका क्या फायदा उस बंदे से पूछने का, वो तो अपने आप को डिफेंड ही करेगा, ठीक है, लेकिन पता लग जाता है, हाँ ये और बात है कि इस बुनियाद पर आप केस का फैसला नहीं कर सकते, केस का फैसला करने के लिए तो आपको एविडेंस चाहिए होती है, बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो ये कसम खा गया कि मैंने हरगिज ऐसा नहीं किया, ये लड़का ही झूठा है, अब्दुल्ला बिन उबई की अपनी कौम में इज्जत थी, सब ने यह करार दिया कि शायद जैद बिन अरकम को कुछ मुगालता लग गया है, इब्न उबई ने ऐसा नहीं किया, गलती हो गई उसे, हो गई होगी, गलत सुन लिया होगा, कभी होता है, बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उबई की कसम और उजर को कबूल कर लिया और लोगों में जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुस्सा और उनकी मलामत और तेज हो गई, यानी वही बात है कि तुमने बड़े के ऊपर इल्जाम लगा दिया, कतई रहमी करी वगैरह, और ये उस रुसवाई के सबब लोगों से छुपे रहने लगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर इस्लाम के साथ पूरे दिन फिर पूरी रात सफर किया और अगले रोज सुबह को भी बराबर सफर करते रहे, यहाँ तक कि धूप तेज होने लगी, धूप तेज होती थी तो फिर तो सफर रोक ही दे रहे थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को एक जगह ठहराया, पूरे एक दिन एक रात के मुसलसल सफर से थके हुए सहाबा कराम जब उस मंजिल पर उतरे तो फौरन सब महवे ख्वाब हो गए, यानी थके हुए थे इतना सफर कर करके कर करके, पहले कभी इतना मुस्तकिल सफर नहीं किया था, ठीक है, तो फौरन जो है ना सब थक करके वो सायों के नीचे लेटते थे और सब जो है वो फौरन सो गए, रावी कहते हैं यानी जिन्होंने ये हदीस रिवायत करी है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम सफर करने की आदत के खिलाफ फौरी तौर पर बेवक्त सफर शुरू करने और फिर सफर को इतना तवील करने का मकसद ये था कि इब्ने उबई के वाकये का चर्चा जो तमाम मुसलमानों में फैल गया था, मुसलमानों को सफर के ऐसे शुगल में लगा दे कि ये चर्चा खत्म हो जाए। ठीक है, यानी मकसद ये था कि जाहिर सफर के दौरान तो अब वो उस तरह से तो नहीं बातें हो सकती कि हर बंदा अपने ऊंट पर सवार है, ठीक है, तो आपस में बातें कैसे चलेंगी, चलते हुए तो फिर मुश्किल होती है। ठीक है, तो और फिर ये कि इतना थकाया कि लेटते ही सारे के सारे, यानी रुकते ही सारे के सारे सो गए। तो देखिए ये भी कितनी ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस थी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जाहिर अल्लाह ताला की तरफ से आपसे सुन के कल मुबारक के ऊपर ये सारी हिकमतें जो हैं वो खुली थी कि ऐसे ऐसे मामला करना चाहिए। क्या लिखते हैं कि जैसे कि हजरत उमर रतान को अबू लूलू के बारे में पता लग गया था। हाँ, अबू लूलू जिसने उनको शहीद किया था, तो नबी रसूलुल्लाह ने भी उनको बताया हुआ था ना कि भी ऐसा ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तो वो भी देखते ही पहचान गए थे उसके चेहरे पे। हाँ, ये मुझे मारेगा। उमर रतान को पता लग गया था, कह भी दिया था लोगों को कि हाँ ये। अच्छा, इसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया। इसी दौरान में जब तक इब्ने उबई के बारे में कुरान की आयात नाजिल ना हुई थी, तो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको नसीहत की कि तू खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने जुर्म का इतराफ़ कर ले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमा देंगे, तेरी निजात हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी जो है वो अकाबिर सहाबा में से थे, तो इनको भी हकीकत का पता था। ठीक है, लेकिन जाहिर है कॉमन लोगों को नहीं पता होता, तो इनको पता था, इन्होंने इसको तजवीज़ दी कि भाई माफ़ी मांग लो ना। इब्ने उबई ने उनकी नसीहत सुनकर अपना सर उस तरफ से फेर लिया। इसके दिल में शदीद नफरत थी मुसलमानों के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ठीक है ना, मेनली जो है वो मुहाजरीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद नफरत थी। इसने सर ही फेर लिया। हजरत उबादा ने उसी वक्त फरमाया कि ज़रूर तेरे इस एराज के बारे में कुरान नाजिल होगा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे और ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार आपसे के करीब आते थे, क्योंकि उनको अपनी जगह यकीन था कि इस शख्स मुनाफिक ने मुझे पूरी कौम में झूठा करार देकर रुसवा किया है, जरूर मेरी तस्दीक और इस शख्स की नकीर में कुरान नाजिल होगा। ठीक है ना, अब ये एक अलग अपने ऊपर एतमाद। ठीक है, क्योंकि ये मामला जो है ना, देखें ये फर्क भी अल्लाह ताला ने इधर ही खोल दिया। हमने जो बात करी थी ऊपर ना, कि ऊपर क्या कहा था, अपने ऊपर एतमाद नहीं करना, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था ना कि कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई सियाक व सबाक ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर एतमाद करना भी होता है। ठीक है, तो वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है, वो ये वाला कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस, इसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ऊपर जो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने अपने नफ्स पर एतमाद नहीं किया। ठीक है, वहां पर क्या कॉन्टेक्स्ट था, वहां पर कॉन्टेक्स्ट था शैतान के खिलाफ। है ना, वहां पर यानी कौन थी मुखालिफ पार्टी, शैतान। ठीक है ना, और अपना नफ्स भी। ठीक है, तो वहां पर अपने ऊपर एतमाद नहीं किया, क्योंकि नफ्स और शैतान जो होता जो होते हैं ना, ये यानी धोखा दे जाते हैं इंसान को। ठीक है, लेकिन यहां पर जैद बिन अरकम ये अपने ऊपर भरोसा क्या कर रहे हैं कि यकीनन मेरे बराअत के अंदर कुरान की आयात नाजिल है। अब ये क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर ये अपने ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं कि अल्लाह का कुरान नाजिल होगा मेरी बराअत के अंदर, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, कोई आपने से बताया गया, क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें, यहां पर क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर अपने ऊपर इतना एतमाद कि अल्लाह की आयात नाजिल होंगी मेरी बराअत के अंदर, हालांकि यंग सहाबी हैं बिल्कुल, है ना, क्या डिफरेंस है इधर में और उधर में। तो क्या वो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे क्या कोई झूठ वाला काम कर रहे थे, ये तो सच्चा काम कर रहे थे। वो तो नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत रसूल, असमत रसूल के ऊपर जो है वो अपने बाप को कत्ल करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा यानी काम कर रहे थे, तो उधर क्या ये ट्रुथ वाला बात तो नहीं बनी। यहाँ पर कॉन्फिडेंस डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस, वहां पर कॉन्फिडेंस का मसला दूसरा था, सच बोलने पे यकीन था। नहीं ना, वो तो सच तो वो भी बोल रहे थे ना यार, ये सच तो दोनों जगह पर है। देखें यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस है एज अगेंस्ट द दुश्मन, इंसान दुश्मन, कुफार के खिलाफ। ठीक है, इसको कहते हैं غیرت ایمانی، ایمان کے اوپر بھروسہ ایز اگینسٹ دا کافر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر ٹاکرا کس کے ساتھ ہے، یہاں پر کافر دشمن کے ساتھ ٹاکرا ہے، ٹھیک ہے نا، کافر انسان، کافر دشمن کے ساتھ، ٹھیک ہے، انسان کے خلاف، ٹھیک ہے، جو کہ کافر ہے، یعنی عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، جو کہ انسان ہے اور کافر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے ساتھ ٹاکرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کس کے ساتھ ٹاکرا تھا، وہاں پر کسی انسان دشمن کے ساتھ ٹاکرا نہیں تھا، وہاں پر شیطان دشمن کے ساتھ ٹاکرا تھا. ٹاکرا سمجھتے ہیں نا، لڑائی، رائٹ، یا یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ، ٹھیک ہے، وہاں پر شیطان دشمن کے ساتھ کانفلکٹ تھا. شیطان کے معاملے میں آپ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ میں شیطان سے لڑ لوں گا، میں شیطان سے نمٹ لوں گا، نہیں، شیطان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن انسان دشمن جب اپنے بالمقابل آتا ہے نا، تو وہاں پر اپنے ایمان کے اوپر، اپنی سچائی کے اوپر اعتماد، ٹھیک ہے نا، اپنے شیطان، اپنی سچائی کے اوپر اعتماد، ٹھیک ہے. ہاں، وہ شیطان دشمن کے لفظ کو جو ہے وہ آپ جن دشمن سے آپ چینج کر لیں، ٹھیک ہے، جن دشمن سے آپ چینج کر لیں، کہ جب جن کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے نا، یعنی مقابلہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ یعنی اپنے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ کافر دشمن کے ساتھ معاملہ تھا، کافر انسان دشمن کے ساتھ، تو اس میں جو ہے نا، اس یعنی دیکھیں، آپ نے کبھی سنا ہوگا، اسی تفسیر کلاس کے اندر ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ فائدے کے لیے بنائی ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر نا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ ہر چیز کے اندر تو پھر جو موزی یعنی جو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یعنی بچھو ہے اور کیڑے مکوڑے ہیں اور سانپ ہیں، تو ان کے اندر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بھائی سائنس نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو اس قسم کے جو بچھو وغیرہ قسم کے جانور ہوتے ہیں نا، تو ان کی بھی جو جو ان کے یعنی ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ان کی چیزوں سے جو ہے وہ دوائیں بنا سکتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو زمین ہل چلا رہے ہوتے ہیں، نرم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے پھر پلانٹیشن ہو گئے، تو فائدہ ہوتا ہے ان کا. لیکن اس کے بعد حضرت نے ایک اور بھی چیز لکھی ہے. وہ کیا چیز لکھی ہے کہ ایون جو جن چیزوں کو ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، روحانی بیماریاں، ٹھیک ہے، شہوت، غصہ، تکبر، رائٹ، عجب، یہ روحانی بیماریاں نا، حضرت نے لکھا ہے کہ ایون یہ روحانی بیماریاں بھی اگر شریعت کی حد میں رہیں تو ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ روحانی کیفیات جو ہے نا، یہ شریعت کے دائرے میں اگر ہوں تو یہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ نفع کے لیے ہوتی ہیں، یہ بھی انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہیں. شہوت انسان کے نفع کے لیے، تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر شہوت نہ ہو تو پھر اولاد ہی نہ ہو سکے، ہے نا. غصہ، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ شریعت کے حد میں ہوتا تھا اور دین کے فائدے کے لیے ہوتا تھا. تکبر کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا، خود اعتمادی، اس کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے کہ بھئی اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. ہاں، اس میں بھی خیر ہو سکتی ہے اگر یہ خود اعتمادی جو ہے وہ کافر کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، کافر کے خلاف ہو، تو یہ فائدے کی چیز ہے. عام سا ہمارا مشاہدہ ہے، کیا ہم اس دور میں جو رہتے ہیں غلامی کے دور میں رہتے ہیں، ہے نا، ذہنی غلامی کے دور میں، مرعوبیت کے دور میں رہتے ہیں نا، ہر وقت جو ہے وہ ہم مرعوب ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی سے مرعوب ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ امریکہ سے مرعوب ہوتے ہیں، کبھی برطانیہ سے مرعوب ہوتے ہیں، کبھی انڈیا سے مرعوب ہو جاتے ہیں، مطلب ہندوؤں سے، اور کبھی جو ہے وہ چائنا سے مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی سے مرعوب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر اپنے دین پر یاد نہیں ہے، اپنے ایمان کے ماننے والے ہیں یار، اللہ ماننے والے، ٹھیک ہے نا، تو
जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ जो है ना, ये जो जो एतमाद है अपनी जात के ऊपर, ये अपनी जात पर एतमाद जो है वो काफिर के खिलाफ है। ठीक है, एज अगेंस्ट द काफिर। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल भी यानी मलामत वाली नहीं है, बल्कि ये महमूद सिफत है, यानी तारीफ, काबिले तारीफ चीज है ये। ठीक है, तो इनको इतना यकीन था अपने ईमान के ऊपर, अपने सच्चाई के ऊपर, क्योंकि ये अब्दुल्ला बिन उबई के खिलाफ थी, कि मेरी बरात के अंदर कुरान नाजिल होगा। अचानक जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कैफियत तारी हुई जो वही के वक्त होती थी, कि सांस फूलने लगा और पेशानी मुबारक पर पसीना बहने लगा, और आप सल्लम की सवारी नाका बोझ से दबने लगी। ठीक है, क्योंकि रूहानी बोझ आप सल्लम के ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो आप सल्लम की अपनी कैफियत भी चेंज हो रही थी। यानी क्या मतलब है इसका? एक रूहानी चीज आप सल्लम के अंदर एंटर हो रही है, लेकिन उस रूहानी चीज का असर जिस्म मुबारक पर पड़ रहा है। ठीक है, तो रूहानी चीज जो होती है ना, वो जिस्म पर असर करती है। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें जो है वो आपस में इनका इंटरफेसिंग होती है इनकी। ठीक है, इनके दरमियान जो होता है वो एक कनेक्शन होता है रूह और जिस्म के दरमियान। तो आप सल्लम का ना सिर्फ ये कि पसीना आना शुरू हो गया, सांस फूलने लगा, बल्कि वजन मुबारक भी इतना बढ़ गया कि ऊँटनी जो है ना वो बोझ से दबने लगी। क्या हो कि यानी पता नहीं कितना मजीद जो है वो मन आपसे सल्लम के ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, तो उनको उम्मीद हुई कि अब कोई वही इस बारे में नाजिल होगी। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लम की कैफियत रफा हुई। मेरी सवारी चूंकि आप सल्लम के करीब थी, तो आप सल्लम ने अपनी सवारी ही पर से मेरा कान पकड़ा और फरमाया, या गुलामो सद्दक हदीसक व नजलत सूरत मुनाफिकीना फी इब्ने उबई मिन अव्वलिहा इला आखिरिहा। यानी ए गुलाम, गुलाम का मतलब ए लड़के, अल्लाह ताला ने तेरी बात की तस्दीक कर दी और पूरी सूरह मुनाफिकून शुरू से लेके आखिर तक इसी इब्ने उबई के वाकये के मुतालिक नाजिल कर दी। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के दरमियान जो है वो ताल्लुक हुआ करता था कान से पकड़ करके, क्योंकि इनकी उम्र कम थी, टीन एज थे गालिबन ये। ठीक है, तो कान से पकड़ करके बात कर रहे हैं और ऐसे जो है उनको खुशखबरी दे रहे हैं। इस रिवायत से मालूम हुआ कि सूरह मुनाफिकून दौरान सफर ही में नाजिल हो गई थी, मगर बगवी की रिवायत में है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा पहुंच गए और जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह रुसवाई के खौफ से घर में छुप कर बैठे रहे, उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। ठीक है, तो हदीसों के जो शान वरूद होती हैं उनमें कुछ कुछ जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, तो किसी रावी के मुताबिक जो है वो बाद में नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा पहुंच करके, और बाकी रिवायतों में ये पता लगता है कि दौरान सफर ही नाजिल हो गए। अच्छा, क्या करें, यहाँ पे क्लास रोक दें फिर, टाइम तो हो गया, क्योंकि वाकया तो अभी और भी है, या अगर 2-4 मिनट दें, बस ये एक पैराग्राफ रह गया, बाकी तो फिर दूसरा वाकया शुरू हो जाता है, तो ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के करीब वादी अकीक में पहुंचे, तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के मोमिन साहिबजादे अब्दुल्ला आगे बढ़े और तमाम सवारियों में तलाश करते हुए अपने बाप इब्ने उबई की सवारी के करीब पहुंचकर बाप की ऊँटनी को बिठा दिया और उसके घुटने पर पाँव रखकर बाप से खिताब किया कि खुदा की कसम, तुम मदीने में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दाखिल हो, और जब तक तुम ये बात वाजे ना करो कि तुमने जो बात कही है कि इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा, इसमें इज्जत वाला कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तुम? ठीक है, अपने बाप से इस तरह से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई अपने बाप का रास्ता रोके हुए खड़े थे और पास से गुजरने वाले लोग अब्दुल्ला को मलामत कर रहे थे कि बाप के साथ ऐसा मामला करता है। आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी उनके करीब आई तो मामले के मुताबिक दरियाफ्त किया, तो लोगों ने बताया कि अब्दुल्ला मोमिन ने अपने बाप का रास्ता इसलिए रोका हुआ है कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मदीने में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे, मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इब्ने उबई मुनाफिक बेटे से मजबूर होकर ये कह रहा है कि मैं तो बच्चों और औरतों से भी ज्यादा जलील हूँ। ठीक है, यानी उस बिलकना शुरू हो गया, हाँ मैं बहुत जलील हूँ, बच्चों से भी जलील हूँ, औरतों से भी ज्यादा जलील हूँ, इस तरह बोलना शुरू हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर साहिबजादे से कहा कि इनका रास्ता छोड़ दो, मदीना मुनव्वरा में जाने दो। तब बेटे ने रास्ता छोड़ा, क्योंकि अतात के तो ये गुलाम थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो नहीं टाल सकते थे। सूरह मुनाफिकून के नुज़ूल का किस्सा तो इतना ही था जो ऊपर लिखा गया है, قصے کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کا اصل ذمہ دار ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حارث بن زرار ہوا تھا. بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام کے ساتھ امہات المومنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی مسلمان ہو گیا. تو ان کی پھر باقی تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. غالباً کسی کو سوال ہوتا تو آلریڈی لکھ چکا ہوتا, تو اس وجہ سے پھر ہم کلاس ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.